आजकल प्रातः क्लास है 14 जुलाई 1965। मेरी कार्ड चला है माता, ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। बच्चों ने महिमा का गीत सुना। अभी बच्चे जानते हैं कि भक्ति मार्ग में महिमा ही होती आई है, क्योंकि जो पास्ट में हो गया है उसकी फिर महिमा होती है। फिर जगदम्बा तुम भारत की भाग्य विधाता हो, गाया जाता है। जब ये हुई भक्ति और महिमा, तुम कोई भी भक्ति और महिमा तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि सबका भाग्य विधाता सौभाग्य विधाता तो एक बाप ही है। बाप समझाते हैं ना सौभाग्यशाली और भाग्यशाली। सौभाग्यशाली और भाग्यशाली सबका गाया जाता है। कौन? एक, फिर दूसरा न कोई। अभी इस समय में जबकि तुमको समझाया जाता है, भले ये हो गई महिमा, भक्ति महिमा करती है, जन्म जन्मांतर ये भक्त गीत गाते आए हैं। अभी हम भगत तो हैं नहीं, हम हो गए भगवान के बच्चे, वो कैसे सौभाग्यशाली भाग्यशाली बनते हैं, या कैसे बच्चे अपन को भाग्यशाली या सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं, वो है पुरुषार्थ की बात। तुम इस समय में बाप से वर्षा लेने के पुरुषार्थी हो, और तुम सभी हो, क्योंकि माँ बाप के तो बच्चे हो, तो तुम्हारा भी कर्तव्य यही है कि जाकर हर एक मनुष्य को सौभाग्यशाली या भाग्यशाली बनाना। सौभाग्यशाली कहा जाता है कि हम स्वर्ग के मालिक बने, 100% भाग्यशाली वो हैं जो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। सो तुम बच्चे तो सौभाग्यशाली हो, क्या बात, तुम बच्चे तो बहुवचन हो गया, और 100% एक होगा या सब बच्चे होंगे है, परंतु ये एक ही जन्म है स्वर्णिम संगम युग का, जहाँ यथा राजा तथा प्रजा सब सौभाग्यशाली होते हैं। हाँ, उसमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो होंगे ही, क्योंकि तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, अभी तो बच्चे जानते हैं, समझाया गया है कि मनुष्यों को तो मालूम ही नहीं है कि स्वर्ग की आयु कितनी है, सतयुग की आयु कितनी है। फिर कलाकम, जिसको फिर स्वर्ग कहा ही नहीं जा सकता है, वो सौभाग्यशाली तो वो भाग्यशाली, भाग्य कम होता जाता है ना, वो 16 कला भाग्यशाली तो वो 14 कला भाग्यशाली, तो फिर उनको कहेंगे भाग्यशाली, वो है सौभाग्यशाली। 100 को कहा जाता है, वो 100% भाग्यशाली तो वो 2 कला कम भाग्यशाली, 14 कला भाग्यशाली। तो उन 14 कला भाग्यशालियों को सूर्यवंशी तो नहीं कहेंगे। तो बच्चे पुरुषार्थी हैं, बच्चे जानते हैं कि हमको तो 100% भाग्यशाली बनना है, 100% भाग्यशाली बनना है, 100% भाग्यशाली भी फिर किसको कहा जाता है, जो आकर के हम सूर्यवंशी में प्रिंसिपल प्रिंसेस बने, क्योंकि ये ईश्वरीय कॉलेज है ना, ईश्वर है विश्व का रचयिता, तो ये है विश्व का मालिक बनने की ईश्वरीय कॉलेज, इसमें ईश्वर पढ़ाते हैं और कहते हैं कि हे बच्चे मैं तुझे पढ़ाता हूँ और तेरे को महाराजाओं का महाराजा बनाता हूँ। अभी दूसरा तो कोई अर्थ नहीं समझे कि भाग्यशाली से भी 100 भाग्यशाली यानी त्रेता से भी ऊपर, द्वापर से तो ऊपर है ही, द्वापर से ऊपर त्रेता, त्रेता से ऊपर सतयुग। तो बोलते हैं कि मैं तुम्हें 100 भाग्यशाली यानी सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनाने आया हूँ। अब ये तो है तुम बच्चों की पढ़ाई के ऊपर, अटेंडेंस के ऊपर, अटेंशन के ऊपर, तो जो जितना पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है औरों को भी ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनको ऐसे ही 100 भाग्यशाली बनाएंगे। तुम सबका धंधा ये है, शिव बाबा सिखलाने वाला है, पीछे बाकी जो भी बच्चे हैं, ब्रह्मा सरस्वती, सरस्वती ब्रह्मा के फिर अडॉप्टेड चिल्ड्रन, वो भी ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्मा के मुख वंशावली होने के कारण तुमको ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहा जाता है। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणियों का ये धंधा है, ये जानते हैं कि हम ब्राह्मण और ब्राह्मणियों से, ब्राह्मण धर्म से देवता धर्म के बनते हैं, देवता धर्म है मुख्य धर्म, गाए जाते हैं अच्छी तरह से। अभी तुम बच्चे जानते हो भारत का इस समय में कोई धर्म नहीं है, वो धर्म को मानते ही नहीं है, धर्म को न मानना ये तो गोया रिलीजियस, गाया भी जाता है कि धर्म में बहुत ताकत होती है, रिलीजन इज माइट, और ये तो अधर्मी हो गए हैं। धर्म को न मानना, माना अधर्मी हो जाना। अभी अधर्मी तो है ही सभी। यथा राजा तथा प्रजा, जब सतयुग में देवी देवता धर्म वाले थे तो बहुत सुख था, और योग को ही फिर कहा जाता है कम्युन यानी कम्युनिकेशन। ये शॉर्ट फॉर्म में निकला है काम यू कम्युनिकेशन मना कम्युनन, इसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। और सिर्फ तुम्हारा कम्युनिकेशन है इस शिव बाबा से, और दूसरे से तुम्हारा बुद्धि का कम्युनिकेशन नहीं है, दूसरा कोई का भी बुद्धि का कम्युनिकेशन बाप से। तुम्हारे सिवाय औरों का शिव बाबा से है ही नहीं। ये कम्युनिकेशन हुआ ना, यानी याद करना। बाबा कहते हैं रात को शिव बाबा से बैठकर बातचीत करो, कम्युनिकेशन करो, बाबा आप कितने मीठे हो। न मन न चित्त, अचानक शास्त्रों में पढ़ते थे तो अभी वो कलयुग में इतना है। आपने तो आकर के कमाल करके दिखलाया कि हमको अभी स्वर्ग की बात चाहिए, दे दी तीरी पर बहस दे दी। तो कोई भी हालत में बाप को याद करना है। 14/7/1965 की वाणी का दूसरा पेज। तुम कहते ही हो बाबा हमारी माँ को थोड़ा हयाती जास्ती देना, तो किसने तुम्हारी कम्युनिकेशन किया, किसको कहते हो, याद भी करते हो, बोलते भी हो, वास्तव में उसके साथ सबका कम्युनिकेशन है, आगे या पीछे। जब भी कोई आफत पड़ती है तो सबको ही कहते हैं हे भगवान इनकी बड़ी आयु दो, ये क्या हुआ, तो कम्युनिकेशन हुआ ना, यानी तुम जैसे बैठकर बातचीत करते हो, हमारा तुम्हारा कम्युनिकेशन लेटर द्वारा भी होता है। फिर ये क्या होता है, आत्मा का परमात्मा के साथ अभी कम्युनियन कहो, योग कहो, याद कहो, अक्षर तो बहुत हैं, परंतु बाप कहते हैं कि मेरे साथ योग रखो, मेरे को याद करो, फिर याद करके जो कुछ चाहिए वो अर्जी करो। अर्जी तुम करो, मर्जी हमारी, ऐसे भी तुम कहते हो। तो कम्युनिकेशन हुआ ना बरोबर। अब ये कम्युनिकेशन याद सिर्फ एक दफा होती है, जो बाप आकर के सिखलाते हैं। और तो सभी कम्युनिकेशन मनुष्य मनुष्य से सिखलाते हैं, जिज्ञासु फॉलोअर्स होते हैं, उनका कम्युनिकेशन मनुष्य गुरुओं के साथ होता है। गुरु के पास जाएगा, कहेगा ये तकलीफ है, हमको ये आफत आई, आप हमारे ऊपर कृपा कर दो, क्षमा करो। अभी यहाँ तो तुम जानते हो कि बाबा आया हुआ है, तुम याद कर करके सामने बैठकर भी कह सकते हो बाबा ये आफत आई पड़ी है, क्या करें। तो बाबा फिर बैठ करके समझाते हैं कि देखो बच्चे ये ड्रामा है और ड्रामा अनुसार तुमको ये दुख है या सुख है, दिवाला मारा है या फलाना किया। तो बाप बैठ करके समझाते हैं ना, तुम्हारा अभी कम्युनियन है ही बाप के साथ, बाप से ही तुम सुनते हो ये बीमार हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ड्रामा अनुसार हुआ, ये तो सब कर्म भोग है, ये कर्म भोग इनको जरूर भोगना है, मैं क्या करने आया हूँ। हम तुमको इन कर्मों से अतीत अवस्था बनाने के लिए आया हुआ हूँ, तुम्हारा काम तो तुमको भोगना ही है, क्योंकि जो भी कर्म भोग भोगते हैं वो अपन ही किया हुआ है। तो मैं तुझे ऐसे कर्म सिखलाता हूँ, देखो ये सन्मुख बैठ करके कम्युनिकेशन होती है, किसकी किसके साथ, आत्मा और परमात्मा के साथ। परमात्मा बाप बैठ करके आत्मा से कम्युनिकेशन करती है, और तो कभी भी कोई परमात्मा आत्मा से कम्युनिकेशन करे या आत्मा परमात्मा से कम्युनिकेशन करे ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ना आत्मा अपन को जानती है और ना आत्मा परमात्मा को जानती है, कोई भी कुछ नहीं जानती है, भले गपोड़े कितने भी मारते रहते हैं परंतु क्या कोई को मालूम है, कभी कोई से सुना है। कि वो स्टार है और उनमें ये अविनाशी ज्ञान नुदा हुआ है, और वो 84 जन्म के लिए जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी उस प्लेट में या रिकॉर्ड में है वो अविनाशी है। कोई को कुछ भी नहीं मालूम, ऐसे अक्षर कभी सुने हैं, उनका तो कोई भी कम्युनिकेशन आत्मा का बाप से होता ही नहीं, अगर कुछ कम्युनिकेशन होता भी है तो भी बातचीत नहीं होती है। वो क्या करते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं। अभी ब्रह्म से कोई बातचीत तो होती नहीं है, बातचीत होती है परमात्मा से या आत्मा से, आकाश से क्या कम्युनिकेशन करेंगे, आकाश तो जड़ तत्व तो है, ब्रह्म भी क्या है, जड़ तत्व तो है। मनुष्य जो आकाश में रहते हैं ये आकाश से क्या बातचीत करेंगे, वैसे ही आत्माएं जो ब्रह्म महत्त्व में रहती हैं, जो यहाँ पार्ट बजाने आती हैं, जानती हैं कि बरोबर हम निर्वाण धाम में रहती हैं। अच्छा निर्वाण धाम से क्या कम्युनिकेशन होगी? निर्वाण धाम को क्या कहेंगे? वो तो मह तत्व है। तत्वों के बीच में महत्व है। भले कोई तत्व योगी है तो तत्व से कम्युनिकेशन हो सकती है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकती है। कम्युनिकेशन तो होती है आत्मा की परमात्मा के साथ, आत्मा की आत्मा के साथ। और तुम्हारा कम्युनिकेशन तो होता ही है एक आत्मा के साथ। वो आत्मा इनको बोलती है, आत्मा सुनती है इन ऑर्गन्स से। बाकी आत्मा न हो तो शरीर तो कुछ काम का नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो जो भी कम्युनिकेशन होती है आत्मा की आत्मा से होती है। हाँ, एक दफा आत्मा की परमात्मा से कम्युनिकेशन होती है जिसकी महिमा होती है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल तो कितना काल। अभी एक बार तुम्हारे साथ कम्युनियन होता है, फिर तो कभी होता ही नहीं है। क्या उन देवताओं की कम्युनिकेशन होती है? वो बोलते हैं, वो हमको याद भी नहीं करते हैं। देखो, कम्युनियन, ये कम्युनियन सभी करते रहते हैं, परंतु उन विचारों को पता थोड़ी है, मालूम थोड़ी है कि हमारा किसके साथ कनेक्शन है। कनेक्शन ही कहो तो हम आत्माओं का, मनुष्यों का कनेक्शन है ये बाप के साथ। वो बाप को ही याद करते रहते हैं, ये पतित पावन आओ। तो ये कम्युनिकेशन हुआ ना। और किसने कहा, किससे कहा? आत्मा ने, जो शरीर में है। और आत्मा ये जानती है कि बरोबर इस समय में ये दुखदाम है। साफ कहते हैं ना, ये बिल्कुल ही अशांत धाम है। हे शांति के दाता, हे देने वाले दाता, अभी हम फिर शांत में कैसे आवे? यानी शांति धाम में कैसे आवे? 14/7/1965 की वाणी का तीसरा पेज। तो फिर वो आते हैं, आकर के कहते हैं कि मैं तुमको शांति सुख संपत्ति देने के लिए मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प एक ही बार आता हूं। अब ये सभी भूल जाते हैं। उन्होंने ये सब घोटाला लगाई दिया। तो जो घोटाला लगाई दिया है वो दुर्गति के लिए। अभी है भी बरोबर क्या दुर्गति? सभी कहते हैं ये पतित पावन आओ, और बरोबर समझा भी जाता है। भारत जो सदगति में था वो अभी दुर्गति में है। कितना दुर्गति में है? समय बहुत नाजुक आता जाता है, बहुत 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 नाजुक। क्योंकि जानते हो बरोबर कि फैमन भी जरूर पड़ेगी। अरे बाहर से इतना अन्न आता है, कितने से सबसे बहुतों से आता है, बर्मा से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, फलाने से आता है। अगर विचार करो कि उनकी कोई लड़ाई लग जाए तो फिर अन्न आना ही बंद हो जाएगा। पीछे धंधा थोड़े ही होता है, तो पीछे क्या हाल होगा, पैसा भी नहीं आएगा, हिसाब अपनी ही लड़ाई की धूमधाम में लग जाएंगे। आने का तो है ना। अच्छा, तुम लोग अखबार तो नहीं पढ़ते हो, परंतु कोई भी समय में, क्योंकि लड़ाइयां तो जगह जगह लगती ही रहती है। आज कहां बेचारा कोई प्राइम मिनिस्टर है, मारो गोली, ना पसंद है चलो दूसरा बिठाओ, ये तो चलता ही रहता है। एक बड़ी लड़ाई लग भी रही है जिसमें भी शक है कि शायद सभी आपस में लड़ पड़े, डर तो रहता है ना। अभी सब लड़ पड़े तो क्या हाल हो जाएगा। ये सब चीजें खाने पीने की, उनके दाम बहुत हो जाते हैं, पीछे क्या होता है, मारा मारी। गरीबों को धन तो चाहिए ना, अन्न तो चाहिए ना, तो पीछे लूटमार, बहुत हंगामा, हल्ला हो जाता है। अच्छा, कहां कोई मुसलमानों की लड़ाई लग गई तो बस, फिर तो देखा कि एक दो को क्या करते हैं। तो देखो, तुम समय को भी देखते हो, बाप बैठ करके सब बच्चों को समझाते हैं। अभी क्या कहते हैं कि बच्चे अभी मेरे पास आना है ना, तुम आत्माओं के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, क्योंकि आत्मा को ही तो भोगना पड़ता है ना। शरीर धारण कर सजा कैसे मिलती है, समझाया गया है। शरीर धारण कराए सजा मिलती है, क्योंकि धारण न हो तो आत्मा को तो कुछ असर ही नहीं होता है। अरे देखो, मेरी आत्मा को तंग मत करो, दुख नहीं दो, क्योंकि आत्मा ही तो फील करती है ना। रोज तुम इसको चोट लगाते हो, मुझे बहुत दुख होता है। दुख तो आत्मा को होता है ना, दुखी आत्मा, सुखी आत्मा, पुण्यात्मा, पापात्मा, ये तो गाते भी है कि आत्मा के ऊपर ही सब कुछ करते हैं। परंतु मनुष्य को ये ज्ञान पूरा नहीं है कि मैं आत्मा हूं, और ये जो भी कम्युनिकेशन है सबकी आत्माओं की आत्माओं से होती है। भिन्न भिन्न शरीर धारण करके ये आत्मा ही खेल करती रहती है। ये खेल बड़ा है। देखो, ये बच्चा इनको पैदा हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो आत्मा कहती है शरीर के साथ मुझे 8 बच्चे। बाप आकर कहते हैं, देखो मैं तो इस शरीर में आया हूं, तो मुझे देखो कितने बच्चे हैं। यूं तो वो बच्चे हैं, परंतु मैं कितना बड़ा डाडा बनता हूं, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारियां मनुष्य हैं, तो बरोबर डाडे भी होगा। अच्छा, ये भी हिसाब किया जाए कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बरोबर मनुष्य सृष्टि रची जाती है। अभी ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का बच्चा। ये तो बुद्धि में अच्छी तरह से बैठता है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है। बरोबर, ब्रह्मा को कोई क्रिएटर नहीं कहते हैं। क्रिएटर कौन हुआ? क्रिएटर हुआ जिसको कहते हैं निराकार परमपिता परमात्मा। वो आकर के कहाँ आकर के? साकारी सृष्टि में ना, तो वो आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा नहीं अडॉप्ट करते हैं, कौन करते हैं? परमपिता परमात्मा इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। और देखो, बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। अब ये बातें तुम समझते हो, सो भी कोई की बुद्धि में बैठती है, कोई सबकी बुद्धि में थोड़ी ही बैठती है। एक रस बहुत बहुत नंबर बार प्रसाद अनुसार है, जो फिर ऐसी रीति से याद भी करें कि बरोबर बाबा हमारा बाबा है। देखो, माया ने तुमको हमसे कितना बिछड़ा दिया है। बाप से माया बिछड़ा देती है ना, क्योंकि वो तो है प्रारब्ध, इसलिए कम्युनिकेशन होने की दरकार ही नहीं है। फिर जब माया ने दुख दे दिया, फिर हमको दुख में याद पड़ता है, फिर हम कम्युनिकेशन करते हैं। बरोबर कम्युनिकेशन करते हैं, मनुष्य समझते हैं, बाप सुनते हैं, नहीं तो वाला किसको याद क्यों करें? जरूर कुछ सुनता होगा ना, ये तो जरूर है ना। हे भगवान, हमसे हमको दुख से दूर करो। हे दुखकर्ता, हे सुखकर्ता, अभी मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं है कि दुखकर्ता सुखकर्ता कौन है। अभी दुखकर्ता सुखकर्ता तो सिवाय गुरु के कोई दूसरा होता ही नहीं है। बाप की ये महिमा नहीं है, ये महिमा गुरु की है। जो कहते हैं मुझे सदगति दो, दुख से छुड़ाओ, कोई बाप को कहेगा क्या? 14/7/1965 की वाणी का चौथा पेज, बाप से तो कभी नहीं कहेगा। टीचर को कहेगा हमको इस दुख से मुक्त करो? नहीं, गुरु को कहेंगे कि हमको सदगति दो या इस दुख से मुक्त करो। परंतु गुरु लोग तो मुक्त कर ही नहीं सकते हैं, वो अपन को ही नहीं कर सकते हैं। तो देखो, ये हो जाते हैं क्या? कौन हो जाते हैं? गुरु, दुख से मुक्त करने वाला। बाप समझाते हैं कि जो भी गुरु लोग हैं, ये तो सभी कलयुगी हैं, और ये कलयुग के कर्मकांड सिखलाने वाले गुरु हैं। वो तो अनेक प्रकार की कर्म कांड है। जो गीता में बोला है धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे, अनेक प्रकार के धर्मों के युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि सब धर्म आपस में लड़ते हैं, और उन धर्मों में गुरुओं ने अनेक प्रकार के कर्म कांड बनाए हुए हैं। जैसे कोई मुर्दों को जलाते हैं, कोई गाड़ते हैं, कोई कुएं पे छोड़ देते हैं, ये कर्म कांड हुआ ना। तो देखो ये कर्म कांड सिखलाने वाले अनेक प्रकार के हैं। तो देखो गायत्री सीखना, ये हठ योग सीखना, हर एक गुरु की मत अपनी अपनी। कोई को देखो भगवान बनाकर बैठ जाते हैं, भाई ये कौन है, ये भगवान है। अभी भगवान मनुष्य तो हो ही नहीं सकता है, है? भगवान कौन हो सकता है, है? शिव बाबा मनुष्य तन में नहीं आता है। अरे भले मनुष्य तन में आता है, परंतु वो मनुष्य तन भी संसार में प्रत्यक्ष तब होता है जब वो अपने मन को पूरा कंट्रोल कर ले। मनन चिंतन मंथन से परे हो जाए, जो पाना था सो पा लिया, अब किस बात का मनन चिंतन मंथन करें। तो भगवान असोचता को कहा जाता है या मनन चिंतन मंथन करने वाले को कहा जाता है, है? भगवान तो असोचता है, वो क्या सोचेगा, वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है। जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है वो तो सब कुछ जानता है, भूत भविष्य वर्तमान पहले से ही जानता है, तो क्या सोचेगा। तो देखो यहां भी तुम इसको भगवान नहीं कहेंगे, इसको है, यहां भी तुम इसको भगवान नहीं कहेंगे, किसको, ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, यहां नहीं कहेंगे। अच्छा कहां कहेंगे, वहां कहेंगे, वहां माने कहां, वहां माने कहां, सतयुग में कहेंगे भगवान, वहां भगवान का परिचय होता है, है? वहां माने कहां, है? परमधाम में कहेंगे भगवान, वहां कहा जाता है, वहां बोला जाता है, परमधाम में कहा जाता है कुछ, है? वहां तो वाणी से परे होते हैं, हैं? जहां वाणी से परे होते हैं वहां तो कहने की करने की बात ही नहीं, तो कहां की बात है। यहां तुम इसको नहीं कहेंगे भगवान, तो वहां कहेंगे, वहां माने कहां, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में तो कहेंगे ही नहीं, वहां तो कोई जानता ही नहीं है, तो कहां की बात है। संगम युग में कहां है, संगम युग भी तो 100 साल का है, और 100 साल में से ये 65 की मुरली चल रही है, इतने साल तो निकाल ही दो, लास्ट मैंने कब है? हाँ, जब बाप मनुष्य सृष्टि का बाप संपन्न स्टेज को पहुंच जाता है, पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है, उस पार्टधारी को अपने अनेक जन्मों की फहरिस्त का पता लग जाता है। तो यहां भी तुम इसको भगवान नहीं कहेंगे? क्या ये भगवान है? बच्चे, मेरे को अपने बाबा को याद करो, जिसको प्राचीन भारत का योग या याद कहा जाता है, उससे क्या होगा? हमारा विकर्म विनाश होगा। फिर जिसको याद करेंगे अंतमते सुगते, हम वहां जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? याद से हम निरोगी होकर के जाएंगे, एवर हेल्दी होकर के जाएंगे, योग से आयु बड़ी हो जाएगी, अविनाशी आयु हो जाती है। पुरुषार्थ तो यहां का है ना, तो वो है प्रारब्ध है। और पुरुषार्थ है यहाँ का। भारत में कहते हैं कि देवी देवताओं की ये आयु बड़ी थी, तो बड़ी आयु ये उनको कहाँ से मिली? जरूर प्रारब्ध से मिलती है। अभी सतयुग में इनको प्रारब्ध मिली है, क्या प्रारब्ध काय से मिलती है? पुरुषार्थ से मिलती है। तो पुरुषार्थ कब किया? संगम में पुरुषार्थ किया। और प्रारब्ध है सती भी मिलेगी, उससे पहले प्रारब्ध नहीं मिलेगी है। हाँ, संगम युग में ही पुरुषार्थ करते हैं, संगम युग में ही पढ़ाई पढ़ते हैं, और पढ़ाई का रिजल्ट भी संगम युग में ही निकलता है, और उसकी प्रारब्ध भी हम संगम युग से ही भोगना शुरू करते हैं। ऐसे नहीं कि संगम युग में प्रारब्ध खत्म हो जाएगी, नहीं, कब तक चलेगी है? 2500 वर्ष तक चलेगी। और 2500 वर्ष के आधार पर अगले जो द्वापर कलयुग के 63 जन्म हैं, वहां भी चलती रहे। अभी सतयुग में इनको प्रारब्ध मिलती है ये कोई भी नहीं जानते हैं, बस भगवान भगवती करते रहते हैं। ये सतयुग के मालिक कैसे बने, किसने बनाया, कोई जानते नहीं है। बस उनको जाकर के तुम्हें व माता च पिता बंधु सखा ऐसे ऐसे बोलते रहेंगे, बोलेंगे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्री वासुदेवम हरिम। ये देखो कविता बनाई दी है अनेक प्रकार की महिमा की, ढेर के ढेर है, और सभी भाषाओं में बोलते रहते हैं, उसका अर्थ कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसका? जो श्लोक सुनाया, क्या सुनाया? अच्युतम केशवम राम नारायणम, कितने नाम ले दिए, सब भगवान हो गए क्या है अच्युतम माने जो ऊपर से कभी नीचे गिरता नहीं, ऊंची स्टेज में ही रहता है, कभी क्षरित होता ही नहीं। केशवम का माने ब्रह्मा, ईश माने स्वामी, ब्रह्मा का भी स्वामी है। श्री राम जो ऐसा है जिसमें योगी रोज रमण करते। नारायणम जो ज्ञान जल में ही रहने वाला है, ज्ञान जल ही जिसका घर है, ऐसा कोई सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में होता है? है? नहीं होता है। हाँ संगम युग में होता है, ऐसा कौन बनाता है जिसका ज्ञान जल में ही घर हो, ज्ञान जल से बाहर रहता ही ना हो? किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। फिर कहते हैं कृष्ण आकर्षण करने से बना है, कृष्ण खींच लेता है सबकी बुद्धि को। उन्होंने फिर कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है, दामोदरम, उदर माने पेट, उन्होंने स्थूल पेट समझ लिया है। बुद्ध रूपी पेट की बात, जिसके बुद्ध रूपी पेट में दाम अर्थात ढेर की ढेर धन संपत्ति भरी हुई है। कौन सी धन संपत्ति? ज्ञान की धन संपत्ति। वासुदेवम वसुदेव का पुत्र है, वासुदेव। वसु कहते हैं धन संपत्ति, वसुदेव मना ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला, और उसका पुत्र वासुदेव कौन कौन हुआ? उन्होंने तो कृष्ण का नाम रख दिया। वास्तव में ज्ञान की धन संपत्ति वो देता है जो कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, तो उसे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रहता है। उस ज्ञान को, उस ज्ञान की धन संपत्ति को वो पहले पहले आकर के कोई तो को तो देता है। जैसे कोई बाप को घर में बच्चा पहला पैदा होता है तो पहले पहले कौन वारिसदार बनता है? पहला बच्चा बनता है। तो ऐसे ही वो वसुदेव ज्ञान धन संपत्ति देने वाला देव, जिसको पहले पहले आकर के ज्ञान धन संपत्ति देता है, जिसको पहलौटी का बच्चा बनाता है, उसका नाम है वासुदेव। उन्होंने कृष्ण का नाम रख दिया। अब कृष्ण बच्चे की तो बात ही नहीं है, कृष्ण बच्चा सतयुग में कोई भगवान से पैदा होगा क्या? है नहीं, किससे पैदा होगा? नारायण से पैदा होगा। देवता का जन्म तो जरूर देवता से होगा। तो देखो ये कविता बना दी है महिमा करने के लिए। भक्ति मार्ग में अनेक कविताएं, भागवत रामायण देखो कितना कितना है। कितनी पूजा करती है, कितनी यात्राएं करती है। और यहाँ देखो शांत, क्या मुख्य पुरुषार्थ ही क्या है? हैं? बोल बोल करने का पुरुषार्थ है, भाषणबाजी का पुरुषार्थ है, या मुख्य पुरुषार्थ क्या है? याद में बैठो शांति में। बाबा बोलते हैं समझा करके, क्योंकि ज्ञान तो सागर है ना, परंतु बोलते हैं ये है सेकंड का काम कि मुझे याद करो, बाप को याद करो, वर्षा तुम्हारा है ही, बाप है ईश्वर कर चेता, तो वर्षा तुम्हारा है ही। मन मना भव मद्याजी भव, बस दो अक्षर हैं, क्या मन मना भव माने मेरे मन में समा जा, मेरे मन के संकल्पों के अंदर ही समा जा, एक संकल्प मात्र भी तेरा मेरे संकल्पों के विपरीत जाने वाला न हो, वाचा से विपरीत हो जाना, कर्म इंद्रियों से विपरीत कर्म करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कहां तक पहुंचना है? हैं? मन मना भव, जब ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं तो जो भी कर्म करेंगे वाचा से करें, कर्म इंद्रियों से करें, मनसा से करें, वाइब्रेशन से करें, वो हो जाएगा मत याजी भव। मत माने मेरे, याजी माने यजन करने वाला, यज्ञ करने वाला, मेरे लिए यज्ञ सेवा करने वाला भव, कोई दूसरे के लिए नहीं, किसके लिए? मेरे लिए। बस ये दो अक्षर हैं, क्या मनमना भव, उसके बाद है मद्यादि भव। अगर मनमना भव ही नहीं हुए हैं तो मद्यादि भव नहीं हो सकते। ये खास दो अक्षर हैं, बाकी तो फिर है सारी डिटेल में समझाने, और ये समझाने कितने समय से देते रहते हैं, कितना समय हो गया हैं? कितने साल? ये समझाने कितने समय से देते रहते हैं, अब ये देखो कितनी कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, योग कॉन्फ्रेंस, फलानी कॉन्फ्रेंस, आपस में कितनी कॉन्फ्रेंस करते हैं, परंतु ये है सब फालतू। देखो हम कहता हूं ये सब फालतू है, कौन करते रहते हैं? अरे दुनिया में करते हैं ना कॉन्फ्रेंसेस, शूटिंग कौन करते हैं? पूरी बात नहीं समझे हैं, गहराई से ज्ञान नहीं समझे हैं, तो ढेर की ढेर कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं। दिल होती है तो उनको जाकर के कहें अरे भाई सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, तो ये सेकंड में जीवन मुक्ति देने वाला कौन है? बस उनकी ही आत्मा और परमात्मा की जब कॉन्फ्रेंस होती है तब फिर आत्माओं को परमात्मा से मत मिलती है। सबसे उत्तम कॉन्फ्रेंस आत्मा और परमात्मा की है। जाया भी जाता है आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। ये कहाँ का गायन है? हैं? संगम का गायन है। आत्मा परमात्मा बहुत बहुत समय से अलग रहे। कितना समय अलग रहे? हैं? 42 से अलग रहे। उससे पहले? हैं? उससे पहले मिले हुए थे? हैं? लड़ाई तो सन 36-37 से ही शुरू हो गई। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई या 5-7 वर्ष के बाद प्रज्वलित हुई? 36-37 से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। तो जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई तो मरना शुरू हो गए कि नहीं हो गए? तो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर क्या हुआ और कब हुआ जो सुंदर मेला कर दिया है? वो कब हुआ है? 76 से परमात्मा, जो परमात्मा है कौन है? आत्माओं में परम पाठधारी आत्मा कौन है? रामबली आत्मा। और रामबली आत्मा सुंदर मेला कर देती है, ऐसा सुंदर मेला जो देखे सो कहे मेरा बाप आ गया, जो कानों से सुने वो कहे मेरा बाप आ गया। ऐसा सुंदर मेला हुआ है? पता नहीं आया, कभी आया कभी नहीं आया। कभी आया तो घर बनाया, नहीं आया तो घर उड़ा दिया। ऐसे भी होता है, हैं? बोलो। घड़ी घड़ी आता है, घड़ी घड़ी भाग जाता है। अरे बच्चा पैदा हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बच्चा पैदा हुआ तो सब कोई कहेगा कि बच्चा पैदा हुआ ना, कि कोई ये कहेगा नहीं हुआ, झूठ बोल रहे हैं ये, ऐसे कहेगा? तो शिव जयंती हुई, शिव भगवान की जय जयकार हुई, जयंती हुई तो हुई। अब ये नहीं कि घड़ी घड़ी निश्चय, घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा होता रहे। तो बोला ये फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस है, आत्मा की, आत्माओं की परमात्मा के बाप के साथ। कब होती है? हैं? 76 से तो होती नहीं। 76 में तो ठीक है, पता लगता है कि बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है, माने मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है। नारायण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई। अब नारायण कोई भगवान थोड़े ही है, तो वो बात तो बाबा ने पहले ही मुरली में बता दी थी। क्या? लक्ष्मी नारायण का जन्म प्रत्यक्षता रूपी जन्म कब हुआ? 10 वर्ष से कम 5000 वर्ष हुए, तो 76 तो साबित हो गया। चलो 76 बता दिया, लेकिन प्रत्यक्ष तो नहीं हुआ। जो नारायण वाली आत्मा है वो प्रत्यक्ष होती है 76, सो भी सबको हो जाती है क्या? नहीं, कोई को होती है, कोई को नहीं होती है। तो वो आकर के एक सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, ये भी पहचान है किसकी? भगवान बाप की। 76 में एक सेकंड में जीवन मुक्ति कोई को मिल गई क्या? मिली? कोई को नहीं मिली। बस फिर उसके बाद ये सभी जो कुछ है, कॉन्फ्रेंस, यज्ञ, तप, दान, हवन होता है, वो सभी बंद हो जाता है। तो तुम्हारी कॉन्फ्रेंस देखो अब कैसी नंबर वन है। और ये किसकी कॉन्फ्रेंस है? जीवात्माओं की हैं और परमात्मा की। अच्छा, ओम शांति।